Thank you. तुम जीविका चलाओगे कथम कैसे। अनुवाद ठाकुर श्री प्रभुपाद जी के द्वारा तुम लोगों ने दान में भूमि भूमि देने का वचन दिया है, क्योंकि जब तुम देने लगोगे तो वे तीनों लोगों में अधिकार जमा लेंगे। तुम निर्मत मूर्ख हो, तुम नहीं जानते कि तुमने कितनी बड़ी भूल की है। भगवान विष्णु को सर्वस्व दान देने पर तुम्हारे पास जीविका का कोई साधन नहीं रहेगा, तब तुम कैसे जियोगे। श्लोक को अनुवाद दोहराना पड़ेगा। तुमने उन्हें दान में जोर से बोलो, तुमने उन्हें दान में तीन पग भूमि देने का वचन दिया है, किंतु जब तुम देने लगोगे तो वे तीनों लोगों में अधिकार जमा लेंगे। तुम निपट मूर्ख हो, तुम नहीं जानते कि तुमने कितनी बड़ी भूल की है। भगवान विष्णु को सर्वस्व दान देने पर तुम्हारे पास जीविका का कोई साधन नहीं रहेगा, तब तुम कैसे जियोगे। बलि महाराज तर्क कर सकते थे कि मैंने तो केवल तीन पद भूमि का वचन दिया है, किंतु प्रकांड विद्वान ब्राह्मण होने के नाते शुक्राचार्य तुरंत समझ गए कि यह हरि की चाल है, जो वहां झूठे भी ब्रह्मचारी के रूप में प्रकट हुए। वर्ष से कथम शब्द बताते हैं कि शुक्राचार्य पुरोहित वर्ग के ब्राह्मण थे। ऐसे पुरोहित अपने शिष्यों से दक्षिणा प्राप्त करने में रुचि रखते हैं। अतः जब शुक्राचार्य ने देखा कि बलि महाराज ने अपना सारा आधिपत्य खतरे में डाल दिया है, तो वे समझ गए कि इसमें न केवल राजा पर अपितु स्वयं शुक्राचार्य के परिवार पर वज्रपात हो जाएगा, क्योंकि उसका परिवार महाराज बलि की कृपा के अधीन था। एक वैष्णव तथा एक स्मार्ट ब्राह्मण में यही अंतर होता है। स्मार्ट ब्राह्मण सदैव भौतिक लाभ की बात सोचता है, जबकि वैष्णव सदैव भगवान को प्रसन्न करने की रुचि लेता है। शुक्राचार्य के कथन से प्रतीत होता है कि वे हर दृष्टि में स्मार्ट ब्राह्मण थे, जिसे निजी लाभ में ही रुचि थी। अवज्ञान ज्ञान श्री चौतन्य मनोदृष्टम साधितम नयन भूतले स्वयं कदा मह्यम ददाति वंदेहम श्रीगुरुश्रीपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवाश्व श्रीरूपं साजिरजातं सौभाग्यनाथानवतं पंचदेवं सांगोतम सावधूतम गौजन संतम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण दान सदा ललिता श्री शाम विनाशम राधे वृंदावनेश्वरी नमस्ते श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर सुदासिनी गुरु हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम जुगाड़ी था जुआ खेलता और जुए में जो जीत जाता शराब पीता है और वैश्या वृत्ति करता है एक बार जुए के फल में बहुत पैसा जीता खूब शराब विचार किया शहर में एक वैश्या को प्यार करता था सोचा जिससे मिल गया रास्ते में उस फूल वाले की दुकान से कुछ सुंदर फूल लिया सोचा जब अपनी प्रेमिका के सर पर फूल लगाऊंगा नशे में धुत हाथ में सुंदर गुलाब का फूल डर खराते हुए जा रहा था एक पत्थर से पांव टकराया धड़ाम से नीचे गिरा तो उसी पत्थर से उसकी सर पर चोट लग गई बहुत उठने का प्रयास किया उठ नहीं पाया फूल ऐसे हाथ ऊपर करके फूल को पकड़ के रखा था अब उस शराबी जुआरी ने सोचा मैं इस फूल का क्या करूं उसने कभी कथा में तो कोई बैठा नहीं कहीं कथा हो रही होगी चलते फिरते उसने कथा में एक शब्द सुना था कि गोविंद नाम लेने से अच्छा होता है तो वो कथा की बात उसके स्मृति में आई याद आई उसे जब उसे लगा मैं उठूंगा नहीं बचूंगा भी नहीं और मैं अपनी प्रेमिका के पास भी नहीं पहुंच सकता कम से कम उस फूल का सदुपयोग तो करूं तो जब उसके प्राण जाने लगे तो उसने फूल को हाथ से यूं फेंका कि पुष्प गोविंद अर्पणम और तुरंत यमराज की वहां उसको ले गए यमराज ने चित्रगुप्त से कहा अभी जो नया कैंडिडेट आया है जरा इसका रजिस्टर तो देखो चित्रगुप्त ने रजिस्टर खोला तो चित्रगुप्त ने यमराज से कहा कि बहुत बड़ा पापी है कि एक जन्म का नहीं कई जन्मों का कई युगों का कई कल्पों का पापी है इसने किसी जन्म में किसी भी युग में किसी भी कल्प में अभी तक एक भी अच्छा काम नहीं क्या करें सीधे नरक भेज दें महाराज ने कहा फिर भी खोजबीन करो, उसे गलती से जाने अनजाने में कोई अच्छा काम ना गया हो। चित्रगुप्त ने कहा हमारे रिकॉर्ड में इसके अच्छे काम के बारे में कोई भी डिटेल नहीं। हाँ अभी अभी 10-15 मिनट पहले ये जब मर रहा था इसके हाथ में फूल था, तो जब इससे प्राण छोड़े तो गोविंद नाम कहा है। तो यमराज ने कहा यहीं पर फंसने वाली बात होती है, क्योंकि गीता में भगवान का वचन है व्यंगम वाप स्मरणम भावम तज्जन्ते कलोवरम तन तमेले की क्रांति सदा तद भाव भावित। जो मरते वक्त मेरा नाम लेता है उसकी दुर्गति नहीं होनी चाहिए, गीता में भगवान कहते हैं। चित्रगुप्त ने कहा इसमें गोविंद नाम कहा जरूर है लेकिन भगवान का ध्यान करके छोड़ दिया, जो मजबूरी थी वो नहीं पाया, चिंतन इसका वैश्या का था। एक आदमी काशी में गंगा जी के किनारे टहल रहा बहुत सारे दोस्तों के साथ, चित्रगुप्त कहता है यमराज से उनमें से एक बकरी ने सूट बंठन भी गया था टायर वगैरह लगा दशा समय घाट पर घूम रहा था, तो उसके साथियों ने कहा था गंगा जी में डुबकी लगा लेना, उसने कहा नहीं नहीं हमारा 10,000 रुपये का सोन 5,000 का भोग यहाँ चोरी बहुत होती है, और हम बता रहे हैं डुबकी लगाएंगे इतने में ले जाएगा तो डुबकी नहीं लगाऊंगा, तुम लोग नहा लो मैं किनारे किनारे टहलता हूँ। तो बाटा कंपनी का अच्छा वाला जूता था तो दशाश्वमेध में घाट की सीढ़ी पर फिसला, सीधे गंगा जी में चला गया। तब बोला लपट पड़े तो हर हर गंगे। चित्रगुप्त ने कहा इसका गोविंद नाम लेने का कोई विचार नहीं है, इसने जानबूझ के भी नहीं लिया है, मजबूरी से रपट पड़े तो हर हर गंगे, इसको लगा फूल वैश्या के पास पहुंचेगा नहीं, चलो गोविंद अर्पणम। यमराज ने कहा फिर भी गोविंद नाम तो कहा है ना इसने, इसका फल क्या है? स्कंद पुराण की कथा है, चित्रगुप्त ने कहा इसने जो गोविंद नाम लेके शरीर छोड़ा है उसका फल ये है कि इसको 3 घड़ी का स्वर्ग दिया जाए। तो यमराज ने शराबी को पूछा तुमको 3 घड़ी का स्वर्ग है फिर हमेशा के लिए नरक है, किधर पहले जाना चाहते हम? तो जन्मजात शराबी है, इससे सुना था देवताओं के आस्ते शराबी मिलती है, सुना नकली बात को थोड़ा असली का भी टेस्ट लेने को तुम्हें चीज रहना, कहां पर स्वर्ग जाना चाहते हैं? तो उसको स्वर्ग भेज दिया और कहा 3 घड़ी के लिए आपको स्वर्ग का इंद्र का पद मिलेगा, उसके बाद छोड़ना पड़ेगा। उसने कहा ठीक है, तो जो असली इंद्र था उसको कहा तुम 3 घड़ी के लिए छुट्टी पर जाओ, इस शराबी को उनके सिंहासन पर आसन पर बैठा दिया कृष्ण। अब इसने सुना था यहाँ शराब भी असली मिलती है और डांस करने वाली लड़कियां भी बहुत सुंदर होती हैं, अप्सरा मेनका ब्रह्मा जैसी अप्सराएं। तो इसने अप्सराओं को ऑर्डर किया सोमरस लेके आओ, के बोला नाचो सुंदर डांस दिखाओ, इंद्र की बदली मिली है। सब अप्सराएं नृत्य करने लगी और उसी स्वर्ग के उस मंडप में नारद जी बैठे हुए थे। नारद जी ने जब उसके कुकृत्य को देखा तो उनको हंसी आ गई, इतने में शराब में दुख इस जुबारी ने नारद जी से कहा तुम्हारी इतनी हिम्मत कि हमारे सामने हंसते हो, क्यों हंसे तुम? खड़े हो क्यों हंसे? नारद जी को डांट लगा। नारद जी भक्ति के आचार्य हैं, दैत्य देवता सभी लोगों की पूजा करते हैं। जब इसकी फटकार नारद जी ने सुनी तब नारद जी ने जोर से इसको फटकारा। उसको गुस्सा में क्यों हंसा? एक गोविंद नाम लेने से तुम्हें तीन घड़ी का स्वर्ग मिला, अगर इस तीन घड़ी में इतनी बड़ी पदवी पर बैठ करके तुम कुछ अच्छे काम कर देगा तो ऊपर उठ जाएगा, तो तुम नीचे को जा रहे हो। तो नशे में दुख था, बोले मैं क्या करूं? नारद जी ने कहा तुमको नाच कराना ही है ना, तो ये फालतू डांस क्यों कराता है? हरि नाम संकीर्तन क्यों नहीं कराता? भंडारा करा दे, साधु संतों को भोजन कराओ, दान दक्षिणा दो, तीन घड़ी अच्छी बस। और नारद जी की बात इस शराबी की दिमाग में बैठ गए। इसने सब अप्सराओं से कहा हरे नाम संकीर्तन करो, हरे कृष्णा 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 हरे, हरे राम राम राम। हरे नाम संकीर्तन हुआ, सुंदर भंडारा बना, सभी ऋषि महर्षि बड़े बड़े ऋषि मुनि बैठे थे, यज्ञ वाला प्रदस्य ऋषि आदि। इससे बहुत अच्छा रहा, फिस्ट किया भंडारा, दान दक्षिणा दे दी, 5,000-10,000 रुपए नहीं, पारिजात वृक्ष कल्प वृक्ष स्वर्ग का जितना वैभव था इसने एक घड़ी में दान कर दिया। एक घड़ी तो संकीर्तन हुआ, और बाद में जिस कुर्सी पर बैठा था इंद्र की वो कुर्सी भी इसने दान में दे दी। अपना क्या जाता है, तीन घड़ी में नाम कमा लेंगे। और पूरा स्वर्ग इसने दान में लुटा दिया नारद जी के कहने पर। श्री राधा राजबाई का तब सा करके सीताराम हनुमान जी की गौरताए थी, जगत गुरु श्री भगवान की। तीन घड़ी पूरी हुई, इसको यमराज के यहाँ पेश किया। यमराज ने चित्रगुप्त से पूछा क्या किया इसने तीन घड़ी वहां? चित्रगुप्त ने क्या महाराज इसने वो काम वहां किया जो आज तक किसी ने नहीं किया। ये तो जो असली इंद्र आएगा उसके बैठने की कुर्सी भी नहीं छोड़ाया, सब गुलाम सब दान कराया। इसे कह जाता यमराज ने डांटा चैन से नहीं बैठ सकता, तीन घड़ी वहां चुपचाप की खा के अपना बैठ जाता, उधर भी तुझे चैन नहीं, नशे में धुत था, कहा हमने जो कुछ करना था कर लिया, तुमको जो कुछ करना है कर लो। यमराज ने चित्रगुप्त से कहा नारद जी के कहने पर इसने जो मुदन बचाया है स्वर्ग में उसकी सजा क्या है? तब चित्रगुप्त ने कहा उसकी सजा ये है कि इसको हमेशा के लिए स्वर्ग का इंद्र बना दिया जाए। तो महाराज बलि के पूर्व जन्म की कथा है स्कंद पुराण में। बलि महाराज साधारण व्यक्ति नहीं है, उनके दादाजी कौन है? प्रहलाद महाराज हरिनाम संकीर्तन करते हैं, पिता विरोचन गुरु भगवान के भक्त हैं, और आज बलि महाराज भगवान को तीन पद भूमि देना चाहते हैं। तो कुछ लोग में शुक्राचार्य जी बलि महाराज को कह रहे हैं कि तुम मूर्ख है, वास्तव में बलि महाराज मूर्ख नहीं है, शुक्राचार्य मूर्ख है। बलि महाराज जानते हैं तो तीन चीजों में फंसे हैं, पहला तो प्रतिज्ञा कर चुके हैं कि मैं तीन पग भूमि दूंगा, दूसरा वो ये जानते हैं अगर मैंने गुरु की बात मानी जैसे श्लोक में कहा शुक्राचार्य ने तुम गरीब हो जाएगा, तुम्हारे खाने पीने का कोई ठिकाना रहेगा नहीं। बलि महाराज जानते हैं अगर मैं शुक्राचार्य की बातों में आया फिर भी मुझे भिखारी होना है, क्योंकि जो मेरे दरवाजे पर भिक्षा लेने आया है ये साधारण व्यक्ति नहीं, अगर मैं अच्छी तरह नहीं दूंगा इसको छीनना भी आता है, क्योंकि उन्होंने हमारे पूर्वजों को बर्बाद करके रखा है। मुझे महाराज जानते बड़ी महाराज चाहते हैं, इससे अच्छा है सारी संपत्ति इनकी दी हुई है तो चुपचाप अगर दे दो कम से कम दुनिया में नाम तो रहेगा, इज्जत तो रहेगी। और यहाँ पर शुक्राचार्य उनको भड़का रहे हैं, मत दो झूठ बोल। और कई जगहों पर कहते हैं झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। भागवत में लिखा अष्टम स्कंद में जीवन में एक बार झूठ बोल सकते हैं, कोई भी किसी की भलाई के लिए, केले की दिन भर दूसरे की भलाई के लिए झूठी बोलते रहो एक बार। और बलि महाराज सिद्धांत को जानते हैं, इसने कहा नहीं मैं झूठ नहीं बोलूंगा। और बलि महाराज ये भी जानते हैं अगर मैं शुक्राचार्य की बातों में आके दान देने से मुकर गया तो दोनों परिस्थितियों में मेरी हानि है, क्योंकि अगर मैं शुक्राचार्य की बात बोलता हूं तो भगवान नहीं छोड़ेंगे, इससे अच्छा कम से कम भगवान की बात मानूंगा तो उनका प्रोटेक्शन तो रहेगा आगे। शुक्राचार्य तो भगवान नहीं है तो बुरा है, इसलिए कहते मैं दान दूंगा। अपने संकल्प से मुकरते नहीं, कहीं पर भी संकल्प से मुकरते। शुक्राचार्य ने भड़काया, यहां तक कि भगवान भी जब तीन पग भूमि दो ही पग में त्रिलोकी नाप ली प्रभु ने, तब कहा तीसरा पग तुम्हारा वचन झूठा हो गया तुमको नरक भेज दूंगा मैं। शुक्राचार्य ने कहा नहीं नहीं, अभी आपने सेठ को नहीं नापा, सेठ की संपत्ति को नापा है। हाँ भगवान ने कहा वो तो तुम ठीक कह रहे हो, तुम तीसरा पांव कहाँ रखे हैं? तो बलि महाराज ने कहा आज मेरे सर पर रख दीजिए तीसरा पांव। किसी नौदा भक्ति में जो आत्मनिवेदन भक्ति है बलि महाराज से, श्रवणम कीर्तनम विश्वम श्रवणम पाद सेवनम अचनम वंदनम दास्यम शिक्षा निवेदनम, सब कुछ भगवान का दिया हुआ है। ईशावा सुमिदम सर्वम यद किंचित जगत ज्ञान जगत तेन तत्न भंगी था मान दुधा प्रसिद्ध। भगवान अपनी वस्तु मांग रहे हैं, कितने मनुष्य को जब कोई चीज हाथ लग जाती है तो समझता है मैंने इसका मान। दधीच प्रकरण में जब देवता लोग दधीच का शरीर मांगने के लिए गए बटकासुर को मारने के लिए, तो दधीच देवताओं से कहते हैं कि जीव को शरीर इतना प्यारा है ये ढांचा किसने किया है? भगवान। उनकी सेवा के लिए ढांचा क्यों दिया? अपनी सेवा करण। और भगवान अगर कभी स्वयं भगवान आए कि शरीर हमको दे दो तो जीव कहता है दधीच कहते हैं देवताओं से क्या करोगे शरीर का, मल मूत्र का भांड है सब गंदा गंदा है अंदर, तो गंदा शरीर ले जाके क्या करोगे? ये नहीं कि ले जाओ, ऐसा बहाना करेगा भगवान का शरीर देने के लिए मन जाना। किसी समझदारी ये है भगवान ने जो कुछ हमें दिया है उसको भगवान को समर्पित करना चाहिए। जबकि भगवान सब प्रति 100% नहीं मांग रहे हैं, 80% में, लेकिन हम उसमें से देना नहीं चाहते हैं। ऋषभवली महाराज जैसा दानिश भूमंडल में नहीं हुआ और भगवान जैसा मांगने वाला भी नहीं हुआ। बलि महाराज क्या कहते हैं, इतना मांगो दूसरे घर नहीं जाना पड़े। इस संसार में कौन ऐसा सेठ है जो किसी भक्त को कहे मैं दे दूंगा दान, दूसरी जगह मत जाना है। बोलेगा मैं भी करूंगा, दूसरी जगह भी हाथ प्रदान से करूंगा। और भगवान कैसे मांगने वाले हैं, पूर्ण है ओम पूर्ण मद पूर्ण मदम पूर्णात पूर्ण मदच्छते पूर्ण सुपूर्ण मादाय पूर्ण मेव अवशिष्यते। भगवान देने में भी पूर्ण है, देने में भी पूर्ण। देते हैं सुदामा को दिया, दो लोग दे दिए, देने की 10-20 करोड़ रुपया दो लोग दे दे, तीसरा भी दे रहे थे, रुकमणी ने पकड़ा बजा तो चल सुधे में चले गया। और भगवान लेने में पूर्ण है, ऐसा मांगा जो शेर था उसी को बेगाड़ी बना दिया भगवान। अब बाद में कहते हैं बलि मैं जिस पर खुश होता हूं प्रसन्न होता हूं, भगवान की प्रसन्नता का प्रमाण क्या है। भगवान कहते हैं मैं जिसको बहुत प्रेम करता हूं उसका सर्वस्व छीन लेता हूं, सबसे पहले धन छीन लेता हूं। और दूसरा भगवान कहते हैं जिसको मैं बहुत प्यार करता हूं उसे घर में झगड़े करवा देता हूं, क्योंकि धन का घमंड होता है आदमी में। झगड़े क्यों कराते हैं भगवान, कि परिवार में प्रेम बना रहेगा तो मेरी तरफ नहीं आएगा, पत्नी अनुकूल बच्चे अनुकूल परिवार के सभी लोग अनुकूल, भगवान की कृपा से सब ठीक चल रहा है तो भगवान की तरफ जाने की क्या जरूरत है। वो झगड़े हम घर में एक दिन वैराग्य आएगा, बेकार है इससे चलो भगवान छोड़ो घर द्वार चलो हरिद्वार, इससे घर में झगड़े भक्तों के घर में झगड़े भी आने चाहिए, इससे वैराग्य उत्पन्न होता है। प्रीति और प्रेम जय धर्म में ग्रंथ है भक्ति गुरु ठाकुर, प्रीति और प्रेम में फर्क बताया। भगवान जिससे प्रीति करते हैं उसे संसार का सब वैभव देते हैं, अपने को नहीं देते। विभीषण लंका का राजा बनाया और अयोध्या में एक महीने रहने के बाद कहा लंकेश कब जा रहे हो लंका। और हनुमान जी से प्रेम करते हैं भगवान, अपने पास करते हैं, इससे भगवान सब कुछ देते हैं अपने को नहीं देते। और कई ग्रंथों में तो ऐसा भी लिखा है पद्म पुराण आदि ग्रंथों में, भगवान नहीं चाहते कि कोई जीव उनके पास आए उनका अच्छा भजन करे, इसलिए मायावादियों को बीच में डाल देते। शंकराचार्य का प्रकाश कैसे हुआ, पद्म पुराण में शंकर जी से कहते हैं भगवान शंकराचार्य बन के जाओ मेरे खिलाफ प्रचार करो ना, पद्म पुराण में इसका सुन। शंकर जी ने कहा ये काम मेरे लायक रह गया क्या, ऐसा खराबादी काम करने की मेरे लिए चिंता। तो शंकराचार्य जी ने मायावाद का प्रचार किया, अंत में रहा नहीं गया, ध्वज गोविंदम ग्रंथ लिखा, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मुदमते संप्राप्ते संगति काले नहीं नहीं रक्षत दुखंकर। तो उनकी लास्ट कृति है, तो उनको लगा मत भोटे भगवान के खिलाफ बोलना। तो कई आचार्यों ने जो मर्मज्ञ के लोग हैं, भगवान के भक्तों ने इस पर रिसर्च की है कि भगवान ने शंकर जी को ऐसा कैसे कह दिया कि मेरे खिलाफ उपचार कर रहे हैं, तुम्हारा रूप नहीं है, मैं अव्यक्त हूँ, निराकार हूँ, निर्गुण हूँ। आचार्य ने इसका अर्थ निकाला है, भगवान नहीं चाहते कि कोई ढोंगी आदमी उनका भजन करे। मनुष्याणां सहस्रेषु यत कश्चित सिद्धये यतताम सिद्धानां कश्चित मावेति। स्वयं भगवान कह रहे हैं हजारों लोग मेरा भजन करना चाहते हैं, कुछ आते हैं और कुछ में से कोई बिरला मुझे समझ पाता है। वो बिरला कौन है? बहुनांग जन्म नामंते ज्ञानवान प्रबद्धते वासुदेव सर्व की सुमहात्मा सुदेव। कृष्ण ने सब कुछ है, ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादराज गोविंद सर्व कारण कारणम। कौन कहता है कि भगवान का शुद्ध भक्त? कई भक्तों को आपने देखा होगा हरे कृष्ण महामंत्र भी जगेंगे, नवरात्र का भी व्रत रख लेंगे, गणपति भी बिठा लेंगे घर में, देवी को भी बिठा लेंगे। भगवान नहीं चाहते कि जो 10 जगह हाथ मारता है ऐसा आदमी वाले धाम में आए, इसलिए बीच में कोई ना कोई आचार्य को किसी किसी देवता को आचार्य बना के भेज देते, जाओ डगमगाओ इनको, दूर करो इनको। और जो भगवान का शुद्ध भक्त है तो कभी भी किसी के डगमगाने पर नहीं आता, जैसे बलि महाराज नहीं आता, शुक्राचार्य ने डगमगाया, जहां तक कि भगवान भी डगमगाते हैं, नरक भेज दूंगा तुम्हें, लेकिन अपने संकल्प से बिल्कुल भी नहीं हिलते। और उसका प्रमाण क्या हुआ? भगवान ने शीतल भेज दिया, शीतल में प्रहलाद महाराज रहते हैं, बहुत प्रसन्न हुए प्रभु। और बलि से कहा बर मांगो। पहले तो बलि महाराज ने सोचा जो भिखारी मेरे यहाँ बीर मांग जाए इससे मैं क्या मांगू। बाद में पति ने समझाया बलि महाराज की, ये विचार ठीक नहीं है आपका, ये जो हमारे यहाँ आए हैं भिक्षु बन गए साथ साथ हरे हैं, और आपने अगर इनको कुछ दिया है तो अपना कुछ नहीं दिया, इन्हीं की चीज इनको दी है, ये बहुत बड़ा एहसान नहीं दिया था। पत्नी की बात मान करके तो भगवान से कहते हैं, भगवान ने बलि महाराज से कहा बर मांगो। बलि महाराज मन में क्या सोच रहे हैं? खुद मेरे दरवाजे को मांगने आए हैं, बच्चे क्या गंदी। तो पत्नी के कहने पर कहा ऐसा, पत्नी ने कहा ऐसा मत, तब कहा मेरे सर पर अपना पांव रख दी। खुश हुए, सूतल भेजा, सूतल के 52 गेट हैं 52। और बलि ने क्या मांगा? मैं जब भी जिस गेट से निकलूं गेट पर आपको दिखना चाहिए। अब भगवान चक्कर में पड़ जाते, पता नहीं कौन से गेट से निकले, 52 गेट है ना। और इन लक्ष्मी जी ने देखा मेरे पति तो बहुत परेशान है यहाँ, तो बलि कभी इस गेट से निकलता कभी इसको, भगवान को पता नहीं लगता कौन सी गेट से निकली। तो लक्ष्मी जी ने क्या किया, एक दिन बलि महाराज के हाथ पर राखी बांध दी, कहा तुम हमारे भाई हो। बलि महाराज ने कहा दक्षिणा में कोई क्या दो, तब कहा 51 गेट बंद कर दो, एक ही गेट से निकला करो। 51 गेट से नहीं जाते थे, एक ही गेट से जाते, और भगवान एक ही गेट पर खड़े रहते थे। और कई शास्त्रों में वर्णन है, अभी बेहोशत मनवंतर चल रहा है, इसके अंत तक बलि महाराज वहां गेट पर चौकीदार कि भगवान की लीला है। भगवान जब बलि महाराज की यज्ञशाला में जा रहे थे, नर्मदा नदी के उत्तर तट पर मृदु कच्छक जगह है गुजरात में, वहां यज्ञ हो रहा है। तो भगवान के पास बहुत सारा सामान था, डंडा कमंडल छत्र, कोई असिस्टेंट तो है नहीं चेला, और 52 अंगुल के कुल थे बोने। अब एक हाथ में छत्री, दूसरे में कमंडल, तीसरे में तीसरी बोटी, किसी में कुछ, और बीच में नदी बढ़ती थी। अब वो छोटे दब गए, जैसे नदी में उतरे थोड़ा सी किनारे पर गए, कंधे तक पानी आ गया। कितने में छत्र नीचे गिरे, कमंडल संभालते हैं तो छत्र गिर जाता है, छत्र संभालते हैं तो कमंडल गिर जाता है। एक ब्राह्मण नदी के किनारे मंत्रोच्चारण कर रहा था, उसने भगवान की इस लीला को देखा और तुरंत नदी के किनारे आया। वो लंबा तक रहा था भगवान से, तो कहाँ जा रहे हो? कहाँ? बलि के लिए यज्ञशाला में दान मांगने के लिए जा रहा हूँ। तो ब्राह्मण ने कहा, मैं तुमको नदी पार करा दूंगा लेकिन कमीशन देना पड़ेगा। भगवान ने कहा कितना? कहा 50-50 पैसा। तो भगवान ने कहा ठीक है, तुम हमको नदी पार कर देगा, जो भी बलि हमको देगा हम फिर तुमको दे देंगे। तो ब्राह्मण ने भगवान बामन को अपने कंधे पर बिठाया और नदी पार करने लगा। जैसे उसने प्रभु को कंधे पर बिठाया, साक्षात भगवान सच्चिदानंद घन शरीर भगवान का, उसके शरीर में प्रेम की स्फूर्ति हुई। और जब उसने आंख बंद किया तो उसे भगवान विष्णु का दर्शन हुआ। और ब्राह्मण ने मन मन विचार किया, मैं कितना भाग्यशाली हूं, मां साक्षात हरि मेरे कंधे पर बैठे। और जब नदी पार हो गई, ब्राह्मण ने कहा मैं चलता हूं प्रभु। भगवान ने कहा कि 50% नहीं लेना है? बोला नहीं, अब सब कुछ मिल गया, 50 भी नहीं चाहिए मुझे, 100% मिल गया, साक्षात हरि का दर्शन हुआ है, 50% से क्या करूं। ऐसे भगवान की भक्ति सेवा वृत्तस्य पश्यति गुरुन बिना अपराधान, सेवा मनाद विजतं बहुधा विपोदी, आविष्करोति कुसुमेश गुणा विशूयान, शीलेन निर्मलमती पुरुषोत्तमोऽयम्। भक्ति श्यामक सिंध का श्लोक गरीब गोसाई का, दयालु है भगवान, थोड़ी भी उनकी कोई सेवा कर दो, वृत्तस्य पश्यति गुरुन बिना अपराधान, कितना अपराध करें इसको नहीं देखते भगवान। सेवा मना कर भी कितना बहुत आदमी बोलती, थोड़ी भी कोई सेवा करते तो बहुत बड़े रूप में देखते हैं, बहुत बड़ा कोई अपराध कर दे छोटे रूप में भी नहीं देखते। आविष्करो तो कुछ नहीं शुभ ना विषयान, शीले में निर्मल मती पुरुषोत्तम, भगवान बहुत दयालु है। इसलिए भगवान के नाम को, उनकी कथा को, उनके स्मरण को, सेवा को, जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए, शुक्राचार्य ने एक जगह ये भी लिखा है, मेरे दादा प्रहलाद महाराज पर कितनी भी विपत्तियां आई लेकिन उन्होंने कभी भी भगवान के नाम को नहीं छोड़ा। हमने सुना था मेरे दादाजी के जो पिताजी थे रणकश्यप, मेरे दादाजी को बहुत तकलीफ देती थी, कितना सताया उनको लेकिन कभी भी उन्होंने भगवान के नाम को नहीं छोड़ा। इसलिए मुझे भगवान को मैंने जो वचन दिया है इसी कभी नहीं मुकरना चाहिए। किसी साधारण जीव को भी बलि महाराज जैसा तो हम नहीं कर सकते, जो महाप्रभु ने जो सिद्धांत स्वयं जो बामन भगवान कली काल में चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं, इन इन प्रकार भगवान का नाम जपना है। यहाँ तक कि अगर गवर्नमेंट ऐसा कानून बना दे कि राम नाम जपना अपराध है, फिर भी जपना है। हम तो भाग्यशाली हैं, भारत भूमि में पैदा हुए, यहाँ तो ऐसा कोई कानून है नहीं, कई देशों में है वो फिर भी लोग जा रहे हैं।
किसी भी युक्ति से रावण के दरबार में एक बार लंका के लोगों ने शिकायत की विभीषण की, कहा महाराज आप हमको बोलते हो राम नाम जपना अपराध है, जो जपे जाओ उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा, लेकिन तुम्हारा खुद का भाई राम नाम जपता है, विभीषण जपता है। अच्छा बुलाओ उसको। क्यों विभीषण, सुना है तुम भर राम नाम जपते हो? और जपते नहीं, मैंने सुना है कि तुम अपने शरीर में भी राम नाम लिख के रखा है। शरीर में ही मैंने सुना है कि तुम जिस घर में रहते हो घर की दीवारों में भी राम नाम छाप के रखा है। बात तो सही है, आप बबूला हो गया, दुष्ट है मेरा भाई। विभीषण ने कहा महाराज ये लंका जमीन को लंका की प्रजा और आपके लोगों को मेरे पर बहन हो गया है, मैं जो राम जपता हूँ मैं आपका ही नाम जपता हूँ, मैं अपने भैया और भाभी को बहुत प्यार करता हूँ। रावण ने कहा कैसे, तुम्हारा आपका नाम रावण है कि नहीं है? तुम्हें पूरा नहीं बोलता, आगे का शब्द ला ले लेता हूँ। और भाभी का नाम मंदोदरी है कि नहीं? तुम्हें पूरा रावण मंदोदरी, रावण मंदोदरी लंबा होता है, तो आपका आगे का राम ले लिया, भाभी का मां ले लिया, तो राम नाम जपना। बहुत खुश हुआ रावण, भाई वो तो ऐसा पूरे राज्य में संविधान बनाया, जैसे मेरा भाई राम जपता है सब जपा करो। युक्ति है ना, पेन केम प्रकार। चार चोरों ने गैंग बनाया, भगवान का नाम भी जपेंगे और लोगों को लूटेंगे। खड़े हो जाते रास्ते में, कोई मालदार पार्टी आती, पहला चोर बोलता नारायण, तो जो अगला चोर था उसको संकेत करता नारायण आ गया है। दूसरा चोर तीसरे चोर को सूचना देता दामोदर, दाम माते पैसा, उधर माने पेट, पेट में बात कर रखा है पैसा। उधर पहले लोग बटुए में पैसा नहीं रखते थे, कमर में बांध कर रखते, मनी बेल्ट होता ना जिससे अच्छा उसे धोती में बांध कर रखते, तो उनको बोलते हैं दामोदर, भगवान का नाम भी हो गया, उसी खबर भी पहुंच गई पेट में पैसा बांधा हुआ है। तीसरा बोलता वासुदेव, बस छोड़ो मत उसको। चौथा बोलता हरि, सब हरण कर लो, चारों ने कोड वर्ड बना रखे थे, लूटते थे मालदार पालते। एक दिन एक शेठ को लूटा, बहुत पैसा मिला, एक पेड़ के नीचे पैसा गिन रहे थे, बिजली गिरी, चार के चार मर गए, भगवत धाम चले। चैतन चिंता मत में सनातन गोस्वामी बात चैतन महापुर की वार्ता है, जब सुवर ने आक्रमण किया एक ब्राह्मण पर, एक मुस्लिम भाई पर, और मुस्लिम भाई स्वर को क्या बोलते हैं, आराम को, चैतन चिंता मत का उपाख्यान है। तो जैसे स्वर ने अटक किया मुसलमान हराम को, हराम को, हराम को, स्वर ने भी छोड़ा नहीं, और मुस्लिम भाई मर गया। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं सनातन गोस्वामी से, सनातन जानते हो मुस्लिम भाई कहाँ गया? स्वर के प्रहार करने से निरंतर, और उसके निरंतर हराम खोर बोलने से, हौ के बाद और खोर से पहले जो राम नाम है वो तो मुस्लिम भाई को बैकग्राउंड लेके चला गया। सुन चैतन्य महाप्रभु, भगवान के नाम में इतनी सामर्थ्य है। चैतन्य भागवत मुरारी गुप्त का उपाख्यान, भगवान का नाम इतनी से फैक्ट्री खोल के बना भी नहीं सकते। बड़े महाराज के एक नाम में तो बल्ली स्वर्ग का राजा बनाया ना, गोविंद नाम। अब इसमें हमारे आचार्यों ने फिर अलग अलग दिया, नामाभास, नामापराध, नामाभास, शुद्ध नाम। वो तो फिर देवता डूब जाएंगे और भी जाए। जैसे हरे कृष्ण हो, कई लोग बोलते हैं हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे। कृष्णा नाम द्रौपदी का है, भगवान का नहीं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम राम। कई लोग ये बोलते हरे कितना, जिनके मुंह में दांत नहीं है, बोलो जिनके मुंह में दांत नहीं है तो हरे कृष्णा कैसे बोलेगा। हरे कितना 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 हरे हरे, जिंदगी भर कितना कितना। शुद्ध नामोच्चारण नहीं आता। इसे प्रहलाद महाराज कहते बचपन से जब तक दांत ठीक ठाक है, नौ ठीक ठाक है, तब तक श्री हरि का नाम जप लेना चाहिए। असरल स र ल, न कोई दीर्घ है न कोई लघु है। भगवान की भक्ति करते करते अगर जीवन में सरलता नहीं है मतलब साधु संत लोग सरल होते हैं। रूपा जी सरल है, हमारे आचार्य सरल हैं, जो भगवान का भजन करते हैं उनका जीवन सरल होता है। भगवान का भजन करना है। एक बार देखते हम लोग क्लास दे रहे थे, कभी हम जो कुछ मांगते हैं भगवान के लिए जरूरी नहीं, कभी कभी शालिग्राम फोड़ के बादाम दिखाते हैं लोग। राजस्थान में एक ब्रह्मचारी था, उसने शालिग्राम रखा था घर में, सबको बोलता था ठाकुर जी को भोग लगाना, भोग लगाना। मेरे ठाकुर जी बादाम खाते हैं, काजू खाते हैं, किशमिश खाते हैं, रबड़ी खाते हैं। तो लोग सेठ लोग बादाम लाते हैं, पिस्ता लाते हैं। जब रात को सब चले जाते हैं, दरवाजा बंद करता, उसी शालिग्राम से बादाम फोड़ के खाते रहते हैं। जीवन में ऐसा ना हो कि हम भगवान के नाम का आश्रय लेके हम लोगों से पैसा लें। सुग्गी बलि महाराज और भगवान बामन का प्रसंग है, डोनेशन मांग रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हम ठाकुर जी के नाम से मांगे और काम करें अपना। पुण्य किसको कहते हैं? किसी भूखे को भोजन कराना, किसी मदद कर देना पुण्य है। किसको भोजन कराना? अनजान व्यक्ति को। मेरा अपना भाई है, सगा है, रिश्तेदार है, पहचानता है, दोस्त है, मैंने उसकी मदद कर दी, उसको पुण्य नहीं कहते। अनजान व्यक्ति, मेरे पहचान का नहीं, मैं नाम भी नहीं जानता उसका, फिर भी उसकी मदद कर दो, उसको पुण्य कहते। जान पहचान वाले की तो कोई भी मदद करेगा, अनजान की करनी चाहिए, तब उसका फल मिलता है। नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि जीवन पर्यंत भगवान भगवान करें, दूसरों को बोले भजन करो और खुद न करें। भगवान राम के दरबार में एक बार कुत्ता आया, गेट पर खड़ा था। प्रभु ने कहा कोई अंदर नहीं आने दे रहा था उसने। भगवान ने कहा अंदर दरबार में आने दो उसने। कुत्ते से कहा प्रभु ने क्या शिकायत है तुम्हारी? प्रभु मैं सुबह मठ में गया था, ये सन्यासी मैं सोचा मेरे को रोटी देगा कुछ खाने को, लेकिन इसने मेरे को डंडा मारा, सर पर मार दिया। भगवान के सन्यासी को बुलाया, जो मारा डंडा का कुत्ता है, अशुद्ध है, मंदिर के अंदर आ रहा था
और कुत्ते का प्रवेश वर्जित है हमारे यहाँ,
कहा वर्जित है इसका मतलब थोड़ी कि तुम उसके सर पर डंडा मारते हैं। भगवान ने कुत्ते की पुकार सुनी, कुत्ते से पूछा क्या दंड दे इसको, कि पहले भगवान खुद दंड दे रहे थे, बाद में कुत्ते ने कहा प्रभु मेरी पुकार और है, दंड मेरे हिसाब से मिलेगा। भगवान ने कहा क्या दंड दे, कहा इसको चित्रकूट के पास एक कालिंदर मठ है, शिवलिंग है वहां, वहां का महंत इसको बना दीजिए। आज भी भगवान ने कहा कालिंदर मठ का महंत क्यों बनाए, तो उसको तो दंड मिलना चाहिए, जेल में जाना चाहिए, और तुम तो इसको मठाधीश बनाना चाहते हो। तब कुत्ते ने कहा ये जो वहां का मठाधीश बनेगा तो उसका अभिमान होगा, मैं भी एक जमाने में कालिंदर मठ का महंत था। कुत्ता बोला वाल्मीकि रामायण में कथा है, पढ़ लीजिए। गलती क्या की, मैं शिवलिंग का अभिषेक करने जा रहा था, जब मैं घी लेके गया तो मेरी कुछ उंगलियां घी के डिब्बे के अंदर चली गई, और मैंने घी का डिब्बा नीचे रखा और उन उंगलियों में जो घी लगा था मैंने चाट लिया, और उसका फल ये हुआ कि मुझे कुत्ता बन गया। इसलिए मैं चाहता हूँ ये सन्यासी को वहां का मठाधीश बना दो, उसका अभिमान होगा जैसे मुझे अभिमान हुआ, और अगली योनि में ये भी कुत्ता बने। भगवान कोई भी पद भी हमको दे, अगर हम घमंड करते हैं अगला जीवन रामायण में क्या सब सरल। श्री प्रभुपाद जी वृंदावन में थे, चौकीदार एक घंटी हो जाते सो जाता था, तो हरि सूरी प्रभु हैं चौपाल जी के सेक्रेटरी थे, हरि सूरी प्रभु ने कहा ये सो जाता है सिक्योरिटी वाला, चौपाल जी ने कहा दूसरा सिक्योरिटी वाला लाओगे तो उसका शरीर जो लोहे का है तो वो तो हाल मान सका, इस शरीर में निमित आएगी आलस्य, नियम बदल दो, उस सिक्योरिटी वालों को बोलो कि हर घंटे में घंटे बजाया करे, तो 10 बजे बजाएगा फिर उसे टेंशन रहेगा 11 बजे बजाना है, 11 बजे बजाएगा फिर टेंशन रहेगा 12 बजे बजाने सोएगा नहीं। वो बड़े आचार्य कैसे भगवान की भक्ति में कि भगवान की सेवा में बना रहे, मंदिर में बना रहे, सरलता जटिलो मुंडे लुच्छित केश काशायांबर बहुकृत देश कश्चन बीजन कश्चन मूढ़ उदर निमित्तम बहुकृत देश, मन मुड़ाए तीन गुण सिर की मुठ गई खाई खाने को लड्डू मिले लोग कहे महाराज, कहीं ऐसा न हो हमारा जीवन लड्डू खाए अंदर कुछ भी लड्डू नहीं टूट गए बर्बाद हो जाएगा जीवन। इसी भगवान की भक्ति में सरल, कई भक्तों को देख सीनियर भक्त को प्रणाम नहीं हुए, मंदिरों में तिलक भी है खाद्य में भी मालूम अभिमान वैसों की सो गए हरी किसों को समझना नहीं, ये वैसों का कहा ठीक है हम भजन कर रहे हैं लेकिन लक्षण एक भी प्रमाणित नहीं होते, हर डिपार्टमेंट का सेम हेड होना चाहिए, शिखा उनका ये लोग पार्ट टाइम सेवा करते हैं, बाल भी रखे हैं, क्योंकि बाहर का भी धंधा चलाना है, इधर भी चलाना है। सरल निर्मल मन जन चबल जाए, निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे छल छिद्र कपट महिमा। भगवान की कत्ती में छल कपट नहीं चलती। सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? जो दूसरे को मूर्ख समझता है। हम समझते हैं बहुत होशियार है, दूसरे मूर्ख। मैं एक बार इंदौर गया था कथा करने, बस में आ रहा था मैं रतलाम को, मेरी ट्रेन पकड़नी थी वहां से। मेरी सीट के पीछे दो आदमी बैठे थे, एक बस में अखबार बेचने वाला आया, अखबार ले लो, अखबार ले लो। दो तीन बार आया, इतने में बस के ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की, हॉर्न बजाया, तो जो मेरी सीट के पीछे बैठा था आदमी, उसने खिड़की से आवाज लगाई अखबार वाले को, अरे बच्चे ये अखबार देना जरा। उसने उसको पैसा दिया, अखबार लिया, और जब बस चलने लगी तो उसके पास में जो दूसरा आदमी बैठा था, तो उसने कहा, वो अखबार वाला लड़का तीन चार बार तुम्हारे पास आया था, अखबार ले लो, अखबार ले लो, तो तब तुमने अखबार लिया नहीं, जब बस चलने लगी तब तुम लिया। उसने कहा बहुत दिन से 5 रुपए का छोटा सिक्का पड़ा था मेरे पास, तो चल नहीं रहा था, अगर मैं उससे लेता तो बोलता है छोटा है दूसरा जो। तो बस चलने लगी, अखबार मिल गया और मेरा छोटा सिक्का चल गया। उसने कहा अखबार पढ़ो तो क्या लिखा है, तो ये समझा मैंने छोटा सिक्का चला दिया। वो लड़का उसका भी गुरु निकला, वो 2 साल पुराना रद्दी अखबार पकड़ा गया उसने। उसने कहा बहुत होशियार समझता है, तुम्हारा भी गुरु है। कभी कभी हम समझते हैं सीधा सा, कुछ नहीं जानता मैं होशियार हूं, ऐसी होशियार हो हम लोग, कोई दूसरा घास कर रहा है, जितने लोग अन्न खाते हैं सब होशियार हैं। मूर्ख कौन है जो अपने को होशियार दूसरे को मूर्ख, नंबर एक मूर्ख है। भगवान ने कुछ होशियारी मुझे दी है, उसको भी तो कुछ होशियारी दी होगी। अरे शेर जब जाल में फंसता है तो चूहा उसको छुटाता है, क्योंकि जाल काटने की विद्या चूहा जानता है, शेर नहीं। शेर शिकार करना जानता है, जाली काटना नहीं जानता है। तो सब होशियार हैं, सब भगवान के जीव हैं, सब भगवान के अंश हैं, मभी वंश जीव लोग के जीव भूत सनातन। भगवान सबके पिता है, अहम सर्वस्व प्रभो, अहम बीज ब्रद पिता। इस भाव से भगवान की सेवा, हरे कृष्णा 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 हरे, हरे राम 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 राम। तो समय हो गया है, किसी का कोई प्रश्न करना चाहिए कुछ नहीं। श्री श्री राधा दास बिहारी भगवान की, श्रीमद भागवतम की, जगत गुरु श्लोक राज की।